जो विद्यादि सागर सुती, जो विद्यादि सागर सुती, गुरुवे हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी, वेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने, पूजो सतत केवल ज्ञान पाने, पूजो सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण पर्व की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जैसे निर्मल आकाश में अगर बादल गिर जाएं तो आकाश की निर्मलता ओझल हो जाती है, छिप जाती है, और बादल हट जाने पर आकाश ज्यों का त्यों जैसा स्वाभाविक रूप से निर्मल है वैसा ही निर्मल दिखाई देने लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमारे मन के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर लोभ की परत जम जाती है, इच्छाओं और कामनाओं की मलिनता हमारी चेतना और मन को ढक लेती है, तब हमारी चेतना का जो विशुद्ध स्वाभाविक उज्ज्वल वितराग स्वरूप है वो दिखाई नहीं पड़ता। सुचेर भावो सौचम, आत्मसंतोष या आत्मा की निर्मलता या पवित्रता को ही शौच धर्म कहते हैं। आचार्य भगवंतों ने लोभ की निवृत्ति को भी शौच कहा। जितना जितना लोभ और लालच, जितनी आकांक्षाएं, जितनी आसक्तियां हमारे मन को नहीं घेरती हैं, उतना हमारा मन निर्मल और उज्ज्वल बना रह सकता है। लेकिन क्या करें, असंतोष का संस्कार है जो हमारे भीतर इच्छाओं को और कामनाओं को उत्पन्न करता है, और हमारा मन, हमारी चेतना मलिन हो जाती है। चाहे वो पारिवारिक असंतोष हो, चाहे सामाजिक हो, व्यक्तिगत असंतोष हो, लेकिन वह असंतोष हमारे भीतर कामनाओं को उत्पन्न करता है। असंतोष और कामनाएं हमारे मन को शौच धर्म प्राप्त नहीं होने देती, हमारे मन को मलिन कर देती। धन की आकांक्षा, पुत्र की आकांक्षा और लोक में मेरी ख्याति फैले इस बात की आकांक्षा, ये तीन आकांक्षाएं अपन अपने मन में लिए बैठे रहते हैं। बहुत धन पैसा हो, यह आकांक्षा निरंतर बनी रहती है। पुत्र नहीं है तो पुत्र उत्पन्न हो, सब कुछ है लेकिन लोग मुझे मानते नहीं हैं, कम ही लोग मुझे जानते हैं, ऐसी लोकेशना, लोक में मेरा अधिक से अधिक लोगों के द्वारा सम्मान हो, मुझे अधिक से अधिक लोग माने और जाने, इस प्रकार की आकांक्षा अपने भीतर रहती है जो हमारे जीवन में शौच धर्म स्वप्न उपलब्ध नहीं होने दिए। श्रीमद रायचंद थे, एक बार एक व्यापारी से उन्होंने हीरे जवाहरात का सौदा किया, जोड़ी थे सुबह से सामान्य रूप से व्यापार में सौदा करते थे, सो वैसा ही किया, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ गई, इतनी अधिक कीमतें हो गई कि अगर आज वर्तमान में जितने हीरे जवाहरात उस व्यापारी को देने के लिए तय हुआ था, अगर बड़ी हुई कीमतों के साथ अगर उतने हीरे जवाहरात श्रीमद रायचंद को देवे तो वो तो फुटपाथ पे आ जाएगा, उसका सारा धन पैसा और मकान भी बिक जाएगा। 8 दिन व्यतीत हो गए, श्रीमद रायचंद जी से उस व्यापारी की भेंट नहीं हुई। रायचंद जी को मालूम पाया कि बाजार के भाव बहुत अधिक बढ़ गए हैं और हिसाब लगाया कि अगर बड़ी ही कीमत पर जो हीरे जवाहरात देने का सौदा हुआ था अगर वो किया जाए तो व्यापारी तो बहुत मुश्किल में पड़ेगा, उसे अपार संकलेश हो रहा होगा, इसी वजह से 8 दिन से वो मुझे मेरा सामना ही करने नहीं आया। सो स्वयं उस व्यापारी के घर पहुंच गए, व्यापारी तो उन्हें अपने घर आया देख करके और हड़बड़ा गया, हाथ जोड़ करके कि बोला कि सेठ जी आप काहे को आए, मैं आपका पाई पाई पैसा चुका दूंगा। पुराने जमाने की बात है भैया, अब मैं इतनी नहीं तो तमाम चले के खड़े हो जाए कि ले लो जैसे मैंने घूस नहीं दे रहे, इतना मोह कषाय नहीं थी कि देने से कोई इनकार कर दे। सो लेने वाले के भीतर भी इतना लोभ नहीं था कि देने वाले की जान सांसत में पड़ जाए, लेकिन मैं तो लेऊंगा। श्रीमद रायचंद ने कहा कि भाई मुझे भीतर आने तक का आमंत्रण नहीं दोगे, मैं तो तुम्हारे घर टकाने करने नहीं आया, पैसे लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आया। सो उस व्यापारी ने गदगद होकर के बैठक में श्रीमद रायचंद को बिठाया। रायचंद जी बोले कि भाई अपना स्वादा हुआ था, दस्तक हुए थे, वो वाला कागज कहां है? सो तिजोरी में से वो कागज व्यापारी ने निकाल करके रायचंद जी के हाथ में दिया। ज्यादा सोचने विचारने का अवसर ही नहीं मिला और श्रीमद रायचंद ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। हक्का बक्का रह गया वो व्यापारी। रायचंद जी ने कहा कि भाई इसी एक छोटे से सौदे जो कि कागज पर लिख करके हुआ है उसकी वजह से तुम इतना संकलेश करके और कर्म बांध रहे हो, ये कागज ही नहीं रहेगा तो काहे का संकलेश? रायचंद जैनी है, दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। इतनी बड़ी बात उस समय उन्होंने अपने लोभ को जीतते हुए कही थी। सो भैया अपन भी जैसे अपने से बने तैसे अपने लोभ को कमती करके जीतने का प्रयास करें तो ही अपने जीवन में शौच धर्म आएगा, वरना तो अपन हर बार शौच धर्म की पूजा कर लेते हैं। आज के दिन कई लोगों ने सप्त धर्म की करी होगी पूजा, शौच बाद में आएगा, लेकिन चारों कषायों के हिसाब से देखा जाए तो क्रोध मान माया लोभ के अभाव में चार धर्म आते हैं, तभी जो सच्चाई समझ में आती सो पांचवें दिन सप्त धर्म माना गया। लेकिन पूजाकार ने पूजा में पहले शौच की पूजा लिखती, बाद में सत्य की, से कंफ्यूज नहीं होना भैया। आज तो हम शौच धर्म का पालन नहीं करेंगे हम तो सत्ताई का पालन करेंगे। नहीं ऐसा आग्रह नहीं, अपन को तो हर दिन दसों धर्म का पालन करना है, एक दिन के लिए एक धर्म का पालन थोड़ी करना। ऐसा विचार करके अपने लोभ को जीतने का अपन प्रयत्न करें। जब शौच धर्म अपने जीवन में आता है तब जीवन चमकीला हो जाता है, परिणाम अत्यंत भीग जाते हैं, मन की कलुषताएं धुल जाती हैं, व्यक्तित्व अत्यंत सारगर्भित मालूम पड़ने लगता है। शौच धर्म से कैसे जीवन में चमक आती है, कैसे जीवन उज्ज्वल हो जाता, चमकीला दिखाई देने पड़ता। निराला बहुत बड़े साहित्यकार थे, सो एक किताब की रॉयल्टी प्रकाशक के द्वारा उनको मिली बहुत पुराने जमाने में 300 रुपए। सो 300 रुपए लेकर के अपने घर जा रहे थे, बड़े दयालु और दानी थे। लोभ कषाय में अभी ज्यादा नहीं घेरा था, सो एक अम्मा रास्ते में भीख मांगते दिखी और उसने निराला के सामने ही हाथ फैला करके कहा कि बेटा कुछ मुझे भी दो। इतना सुनते ही निराला के मन में बड़ा विकल्प हुआ, सो 300 रुपए पॉकेट से निकाल करके अम्मा के हाथ में रख दी और कहा कि मुझे बेटा कहती हो तो कम से कम इन 300 रुपए से अपना जीवन चलाओ, भीख मत मांगना, मैं तुम्हारा बेटा होगा। अपने लोभ को जीत करके दूसरे को निर्लोभ होने के लिए उपदेश दे दिया और बूढ़ी अम्मा ने भी निराला के सामने सौगंध खाई कि आज से भूखे भले ही मरना पड़े लेकिन भीख नहीं मांगूंगी। अपने लोभ को इस तरह से परस्पर जीतने के लिए अपन प्रयत्न कर सकते हैं और अपने जीवन को चमकीला बना सकते हैं। संत एकनाथ के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वो नदी में स्नान करके निकल रहे थे, जो किसी ने थूक दिया और ऐसा सोपते किया, लेकिन हर बार उन्होंने स्नान करके फिर नदी से निकले, 100 दफे हो गया, सो वो व्यक्ति भी उसको भी शर्म आई, सो संत से नमस्कार किया कि हमने बेकार में 100 दफे हो गया थूका आपके ऊपर, आपने कुछ नहीं कहा। बोले उसमें क्या कहना, मैं तो तुम्हें हर बार धन्यवाद देता था कि चलो तुम्हारे निमित्त से मुझे 100 बार स्नान तो करने के लिए मिला, मेरी निर्मलता मेरी स्वच्छता के लिए तुम निमित्त बने हो, बाहरी स्वच्छता ही नहीं अंतरंग की निर्मलता तो देखो, भीतर कहीं भी कलुषता उस व्यक्ति के प्रति नहीं आने दी, तब अपना जीवन उज्ज्वल बनता है, चमकीला बनता है। इतना ही नहीं परिणाम भी भीग जाते हैं जब अपना जीवन चमकदार बनता है, या कि जब परिणाम भीगते हैं तब भी मन की कलुषताएं धुल करके हट जाती हैं। मुझे 1984 में एक नौवीं पढ़ने वाले बच्चे ने संस्मरण सुनाया था कि महाराज जी मेरी स्थिति कमजोर है आर्थिक रूप से, सो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने मोहल्ले में ही दूध बेचता हूं, मेरे बड़े भाई भी बेचते। महाराज एक बात पूछनी है मुझे आपसे कि 40-40 लीटर दोनों जन बेचते हैं, सो मेरा तो 40 लीटर बिक जाता है, रोज का काम है कि 1-2 रुपए अधिक ही मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन मैं कभी अपने दूध में पानी मिला करके लोगों को नहीं देता उसकी वजह से तुम्हारे लोभ कम होने की वजह से, निर्मलता की वजह से लोग भी तुम्हें अधिक देने के लिए उत्सुक रहते हैं कि शुद्ध दूध देता है, साफ सुथरा देता है, मिलावट नहीं करता, जिसके परिणाम दूसरे के प्रति ऐसे ही भीगे हुए हैं, दूसरे का आयत करने का भाव नहीं है, तो भैया उसका जीवन ही निर्लोभ होकर के चमकदार होगा। इतना ही नहीं, जीवन भीग जाता है तो मन की कलुषताएं आपो आप नष्ट हो जाती हैं। विनोबा का आज जन्मदिन है, हैं? लोगों को मालूम नहीं होगा, गांधी जी भर का मालूम 2 अक्टूबर प्रसिद्ध है। वो अपने कमरे में झाड़ू लगाते थे, लोग उनकी झाड़ू पकड़ लेते थे कि आप इतने बड़े पुरुष होकर के झाड़ू लगा रहे कमरे में, मुझे जो मैं करूंगा। तो क्या कहते थे कि देखो जैसे भगवान ने अपन को मन की मलिनताओं को हटाने के लिए कहा है, ऐसे ही तो कमरे की वायु मलिनता को, कचरे को हटा करके मैं फेंक रहा हूं। मैं भगवान के अनुरूप पूजा और आराधना ही तो कर रहा हूं, जो भगवान ने कहा उसी को तो मैं कर रहा हूं। इसमें मुझे मैंने ऐसा क्यों मानना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, इस काम के योग्य नहीं हूं, ये काम तो छोटा नहीं है, ये तो बड़ा काम है। जैसे कचरा फेंकना छोटा माना जाता है, ऐसा नहीं है, मन की मलिनताओं को हटाना, कलुषताओं को हटाना तो बहुत बड़ा काम है, ऐसा विचार करते थे वो। इतना ही नहीं, एक घटना और आती है। एक बार एक सेठ जी अपने और मित्रों के साथ में जंगल में से जा रहे थे, जंगल में से जाते हुए उन्हें डाकुओं ने घेर लिया, पकड़ लिया, सो सब सामग्री छुड़ा ली, उनके भोजन करने की सामग्री भी छुड़ा ली। जब सरदार के पास पकड़ करके सब सामग्री और व्यक्ति को ले गए, तो सरदार ने कहा कि पैसे तो ठीक हैं, लेकिन उस व्यापारी की भोजन सामग्री उसे दे दो। सो उठा करके पोथी उसे दिलवा दी। बात आई गई हो गई, वर्षों व्यतीत हो गए। एक दिन वही व्यापारी अपने काफिले के साथ पुनः जाता था, रास्ते में एक दीनहीन घायल अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति उसे दिखाई दिया, उसकी सेवा करी और अपने पास जो खाने की सामग्री थी वो उसे खाने को दे दी। उसको चेतना आ गई, उस व्यक्ति ने व्यापारी को देखते ही पहचान लिया और व्यापारी से कहा कि भाई मैं तो वही डाकू हूं जिससे कि तुमने पकड़ा था, जिसे कि मैंने पकड़ा था और सारा धन ले लिया था, तो वही व्यापारी हूं। फिर मेरे ऊपर अपने मन को कलुष करना चाहते तो कर सकते थे, मेरे ऊपर उपकार क्यों कर रहे? व्यापारी ने कहा कि तुमने धन पैसा सब छुड़ा लिया था, लेकिन मेरा खाने का सामान मुझे लौटा दिया था, यह बात मुझे आज भी ध्यान है। ये उपकार वही मैं तुम्हारे ऊपर भी कर रहा हूं कि तुम्हें भोजन की सामग्री भले ही तुम डाकू हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सेवा करूं, भोजन पानी के द्वारा तुम्हारा उपचार करूं। भाई मन तो क्षण भर में कलुषित हो जाता है, अपने मन का नहीं होने पर मन कलुषित होता है और कुछ नहीं। चाहे जिसके बारे में अपन चाहे क्षण भर के अंदर मन को कलुषित कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स फौरन आ जाते हैं, लेकिन विचार करें कि मन की मलिनता से सामने वाले का कुछ बिगाड़ कर पाएंगे हम? हमेशा हमें याद आता है कि रावण ने अपने मन को मलिन करके राम को मारने के लिए कितना उपाय किया, लेकिन बार बार का करता। ऐसा विचार करके अपने मन को कलुषित होने से बचाना चाहिए, तभी अपने जीवन में सारी धार्मिक क्रियाओं का जैसा फल मिलना चाहिए, शौ माथे ग्रंथ लिखते थे और काम भी करते थे। धन पैसे कमाने के लिए उन्होंने जिनवाणी की सेवा नहीं की, जिनवाणी की सेवा अलग है और मेरी आजीविका के लिए मैं अलग उद्यम करूंगा, ऐसा उनका विचार था। सो राजा के यहां पर नौकरी करते थे, जो धन पैसा मिलता था उससे आजीविका चलाते थे और अपने ग्रंथों का पारायण करके लेखन इत्यादि करते थे। सो एक बार सब नौकरों के वेतन को बढ़ाने के लिए राजा ने आदेश दिया। सो उनका भी वेतन बढ़ाया गया। जब बड़े हुए वेतन को दिया गया तो सदाशिव राय जी ने कहा कि भाई मुझे तो इतना मिलता है, ये ज्यादा क्यों दे रहे हो? भूल वैसा है। कहते नहीं, राजा साहब ने ज्यादा ही देने के लिए कहा। नहीं लिया उन्होंने कि मैं नहीं लेता भाई। राजा को लगा कि शायद कमती होगा और दे तो नहीं थे, तो उन्होंने उससे दूना देने के लिए कहा। तो हंस करके सदाशिव राय जी ने कहा कि राजन, अगर मेरे से प्रसन्न हो और मुझे वेतन बढ़ाना चाहते हो तो इतना कर दो कि मेरे वेतन को उतना ही लेने दो जो आपके यहां सेवा करता हूं, उसका समय कम कर दो ताकि वो बचे हुए समय में मैं ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकूं और लेखन कर सकूं। ऐसे बनता है जीवन सार गर्भित। अपन को तो भौतिक सुख सुविधा के बड़े आसान से साधन मिल गए, लेकिन समय कहां चलो? जो धर्म ध्यान में लगना चाहिए था, 5 मिनट में बटन दबाया और मसाला कुक करके तैयार, 5 मिनट के अंदर रोटी बनाने के लिए गैस जल गया, पहले तो मकाई फूकत फूकत चूगो और आंखें खराब हो जाए, जलेंगी हम सब को मिला के वो पंखा हिलवा रहे, कहीं फूक रहे हैं, नली आती थी एक भूख नहीं थी तो उस वजह से फूको, अब वो मुंह में प्यार लग रहे हो, आंखें में धुआं लग रहा है, इतनी मेहनत करके और करते थे तब भी समय मिलता था धर्म ध्यान करने का। आजकल तो सब भौतिक चीजें बड़े आसानी से उपलब्ध है, लेकिन वो समय कहां चला गया जो बच जाता था? वो समय अपना भौतिक सुखों की प्राप्ति में अपन ने लगा दिया, जिससे कि आत्मा के सुख के लिए धर्म ध्यान अपन को करना था। कैसे अपना जीवन अपन सार्वरूपित बना पाएंगे भैया? लालच कम करके और अपने आत्म ध्यान के लिए जो अपन समय निकालते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है। जितना जितना कामनाएं कम होती जाए, जितना जितना मन में संतोष आता जाए, धरी है वे संतोष करूं तपस्या देश, शरीर से आसक्ति कम करने के लिए तपस्या करो और अंतरंग में संतोष भाव रखो, यही शौच धर्म है। इतना एक लाइन में ही सारा कुछ कह दिया। अपन करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकते कि मन में 4 चीजें हैं तो 40 नहीं चाहिए भैया, संतोष पूर्वक हम जीवन जिएंगे। और शरीर को आराम कलम निभाओ ने अपन को तो शरीर का उपयोग करके उससे तपस्या करनी, अपने कर्मों की निर्वाह करने की। ऐसा अगर अपने विचार आ जावे तो शौच धर्म बड़े आसानी से अपने जीवन में आ सकता है। सबको मालूम है बाहुबली भगवान की 57 फीट की गोमटेश्वर में मूर्ति बनी। सो मूर्तिकार के मन में लोभ जागृत हो गया था। जब राजन ने कहा चामुंड राय ने कि जितनी मूर्ति का फाइन टच दोगे, जितना उसमें से खिलेगा पत्थर, उतने माप का मैं सोना जाऊंगा। सो लोभ जागृत हो गया था और मूर्ति बनाते समय हथौड़ी नहीं चलती थी, हाथ रुक जाता था। मां से कहा कि मां मूर्ति को तराशने में मेरा हाथ काम नहीं करता, हथौड़ी काम नहीं करती। तो मां ने कहा कि बेटा तुम्हारे भीतर लोभ जागृत हो गया, उसे जीतो, तब जाकर के तुम भगवान की मूर्ति की रचना कर पाओगे। अपन सब जानते हैं कैसे कैसे अपन ने उस लोभ के पीछे अपने जीवन को, अपने अपने मन को कलुषित किया है, करते ही रहते हैं। जरा से लोभ के पीछे अपना चित्त कितना कलुषित हो जाता। नाना प्रकार के लोभ हैं, सम्मान का भी लोभ है, धन पैसा का लोभ तो है, हमारी रह जा रही बात का लोभ है, हाँ और को की रह जाए चाहे नहीं चाहने वाले की हमारी रह जाए बात, ये लोभ है, ये कानून लोभ। इस तरह की सैकड़ों किस्म के अपन लोभ लालच में दिन भर अपने मन को कलुषित करते रहते हैं। एक छोटी सी घटना आपको सुना, मैंने कहीं पर पढ़ी थी और बहुत अच्छी जान पड़ी। एक गरीब व्यक्ति के बेटा बहुत अस्वस्थ हो गया। एक तो गरीब आदमी और उसके यहां कोई अस्वस्थ हो जावे तो वह परेशानी, अस्वस्थता के कारण डॉक्टर को कैसे बुलाएं, ले जाने की तो हिम्मत नहीं है, डॉक्टर को बुलाएंगे तो फीस चाहिए 50 रुपए, अब कहां से लाए। सो पड़ोसी से जाकर के बहुत आरजू मिन्नत करी कि भैया बेटा बीमार है, फीस के लिए 50 रुपए हमारी मदद कर दो, हम चुका देंगे। सो पड़ोसी भी सज्जन था, बहुत मुश्किल है, बहुत पुण्य के उदय से पड़ोसी मिलता है ऐसा सज्जन है। ये पड़ोसी अपना तो दर्जन है, ये सज्जन थोड़ी है, ये अपना पड़ोसी है तो संदेह रहता हमेशा शरीर, लेकिन ऐसा शरीर जो कि तपस्या में सहायता करे सो तो सज्जन है, और जो भोग विलास के लिए लगाए रहे अपन उस शरीर को तो वो तो दुर्जन ही है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दुर्जन देह स्वभाव बनाओ, मूर्ख प्रीति बनाओ। अगर हम शरीर के प्रति आसक्त हैं तो ये तो दुर्जन हो जाएगा शरीर। सो पड़ोसी व्यक्ति ने 50 रुपए उस व्यक्ति को दे दिए, भागा भागा डॉक्टर के पास गया और फीस सामने रख दी के मना नहीं कर दो, मैं हमें गरीब से देख करके कहा मना कर दो, कपड़ा पहले देखा क्या अच्छी रिपेयर है कि नहीं पहने, अच्छे साड़ी कपड़ा पहने तो फिर सुनो बात, वो नहीं तो गरीब शरीर की कौन सुनता, फटे के दे कपड़ा हर को सुन। सो उसने जाके 50 रुपए रख दिए, निवेदन किया कि हमारा बेटा बीमार है, आप चलो हमारे घर। डॉक्टर साहब ने उनके यहां और पेशेंट बैठे थे, सो कहा कि चलो तुम धीरे धीरे, हम मोटर गाड़ी में बैठ करके इन पेशेंट्स को निपटा कर जल्दी आते। सो 5-10 मिनट में डॉक्टर साहब जब फ्री हुए, सो उनका ड्राइवर नहीं था तो रिक्शे वाले से कहा कि भैया जल्दी ले चलो उस व्यक्ति के घर। सो रिक्शे से तो जानते ही हो तो देर और लगेगी 10 मिनट। सो उतनी देर में जब तक डॉक्टर पहुंचे तब तक तो काम हो ही चुका था, बेटा तो समाप्त हो गया। गरीब आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपने फीस के पैसे तो ले लो, आप इतनी दूर तक भागते हैं अपना काम छोड़ करके। डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना लोभी नहीं हूं मैं तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं कर पाया, तुम्हारे बेटे का इलाज भी नहीं कर पाया, किस बात के पैसे। सो डॉक्टर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, अब तो पहले भरवा लेते कि पता नहीं के बाद में दे हो तुम्हें दे है? कैसा लोग अपने भीतर जागृत हो गए धन संपत्ति का, कि सारे संबंधों की जो पवित्रता की जो नष्ट हो गई। 50 रुपए नहीं लिए, सो उसने जाकर के कि 50 रुपए का अपन क्या करेंगे, पड़ोसी के चुकाने हैं सो अभी चुका दो। सो 50 रुपए पड़ोसी के चुकाने गए, सो पड़ोसी ने सारी घटना सुन ली, डॉक्टर साहब ने नहीं लिया है पैसा और बेटा भी नहीं बचा। सो पड़ोसी ने भी कहा कि मुझे 50 रुपए तुम वापस नहीं लौटाना कभी भी, ये तो तुम रख लो तुम्हारे काम आएंगे। सो उसने भी लोग जीत करके 50 रुपए छोड़ दिए। अब देखना मजे की बात कि डॉक्टर साहब जिस रिक्शा में आए थे तो रिक्शा वालों ने भी सुन लिया, जब डॉक्टर साहब अपने रिक्शा में वापस लौट करके अस्पताल पहुंचे तो रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे का किराया लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो 50 रुपए छोड़ू तो छोड़ सकता हूं इतनी, मेरे अंदर हिम्मत है भाई, तुम तो रोज कमाते हो, कि डॉक्टर साहब आप मानवीयता दिखा सकते हैं तो मैं भी मानवीयता में पीछे नहीं हूं, मेरे अंदर भी जिंदा है मानवीयता। आपने पैसे नहीं लिए, मैं काहे को आपसे किराए का पैसा लें। ऐसा कर
टूट न जाए। पूर्वकपन ने थोड़ा सा जीवन को सैनिक बनाने के लिए अनुव्रतों को धारण किया है। उन अनुव्रतों के गुणों को बढ़ाने के लिए अनुगणनाथ गुण बतान नार्य जो तीर्थंकर भगवान है उन्होंने हम सब प्राणियों पर उपकार करके और जो ग्रहण किए हुए अनुव्रत है उनके गुणों में और वृद्धि हो, समता और विचारता अधिक आवे, इसके लिए गुण व्रतों का उल्लेख किया आचार्य संत भद्र स्वामी ने। तीन गुणव्रत कहे हैं, दिग्व्रत्यम परिजन दिग्व्रत मदर्थ दंडक प्रथम च भोगोप भोग परिवन्ना अनुगणनाथ गुणाना शांति वो नाम शांति गुण बतान नार्य जो तीर्थंकर भगवान हैं उन्होंने संत भद्र आचार्य कह रहे हैं कि तीन गुणव्रत कहे हैं, दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रत और भोगोप भोग नाम का व्रत। आचार्य माताओं महाराज के चरणों में बैठेंगे तो वो दिग्व्रत देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत ऐसे तीन गुणव्रतों का उल्लेख करते हैं। भोगो भोग परिवार को तो वो शिक्षा व्रत में ग्रहण करते हैं, सो अंतर नहीं है, अपने अपने कहने का ढंग है। मुख्य उद्देश्य तो जो व्रत ग्रहण किए हैं उन व्रतों की रक्षा
या उन व्रतों में और अधिक वृद्धि के लिए गुण व्रतों को रखा गया है। जैसे अपन खेत में फसल बोते हैं तो गाय आकर के उस फसल को खराब न कर दे, कोई और उस फसल को काट न ले जाए, इससे रक्षा करने के लिए अपने बाड़ी लगा देते हैं। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाड़ी होती है ठीक इसी तरह ग्रहण किए हुए अनुव्रतों को जो कि श्रद्धा और विवेक के साथ अपन ने ग्रहण किए हैं उन व्रतों को रक्षा करने के लिए तीन गुण व्रत रखे। दिव्रत में दसों दिशाओं की सीमा बना लेते हैं, अनर्थ दंड व्रत में जो निष्प्रयोजन संसार के कार्य हैं उन सबसे बचने का प्रयास करते हैं और अपने उपयोग में आने वाली सामग्री को सीमित कर लेते हैं। इन तीनों प्रकार से अपन साधना करके अपने अहिंसा आदि जो अनुव्रत ग्रहण किए थे उन व्रतों की वृद्धि करते हैं। भैया दसों दिशाओं की सीमा बनाने से क्या लाभ है, जहां जाओ वहां जाओ ये तो बंधन हो गया। नहीं भाई, दसों दिशाओं में ये जीव ये मन निरंतर यहां से वहां भागता रहता है, भले ही जा नहीं पाए लेकिन मन के द्वारा तो चला जाता है और जो पापकारी है उनमें अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है। सो उस सूक्ष्म पाप से बचाने के लिए आचार्य भगवंतों ने दसों दिशाओं की सीमा कर लेने का उपदेश दिया कि जब तुम्हें वहां जाना नहीं है तो तुम उस मर्यादा के बाहर जाने का त्याग कर दो। उस मर्यादा के बाहर नहीं जाओगे तो जो सूक्ष्म पाप हैं उनसे बच जाओगे। घर गृहस्थी में पापकारी तो जो प्रयोजनभूत हैं जिनके बिना कार्य नहीं चलता वो तो श्रावक करता ही है, लेकिन निष्प्रयोजन जो पाप हो रहा है उससे आचार्य भगवंत बचा रहे हैं। इसलिए दसों दिशाओं की सीमा करने के लिए उल्लेख कर दिया। भैया पांच इंद्रिय और मन के तो विषय इतने हैं कि सब दिशाओं में दौड़ो तो कहीं भी अंत नहीं है, अंतहीन है पंचेंद्रिय और मन के विषय। हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, दौड़ भी नहीं रुकती है, अंधी दौड़ है, सुबह से शाम तक उसी पंचेंद्रिय और मन के विषयों जो निष्प्रयोजन है कम से कम उसका तो त्याग कर लो। तो उसके माध्यम से होने वाले पाप से बच जाओगे। और एक दिशा में अगर चले अपन तो कहीं पहुंचने का भरोसा है, लेकिन सैकड़ों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा चले तो कहां पहुंचेंगे भैया। एक व्यक्ति को किसी ने बता दिया कि पानी चाहिए हो तो खूब गहरा खोदो। कितना? तो कहने लगे कि 200 फीट खोदना पड़ेगा तब पानी निकलेगा। ठीक है, 200 फीट खोद लेंगे, उसमें क्या। सो कमरे भर में उनने 20-20 फीट 10 जगह खोद ला, 200 हो गए हैं। अब जब नहीं निकला तो उससे शिकायत की कि भैया तुमने 200 फीट खरीदी, हमने तो खोदी लेकिन पानी नहीं निकली। तो उसने जाकर के देखा कि इन्होंने तो हमारे कहे हुए का दुरुपयोग कर लिया, एक दिशा में कार्य नहीं किया, अनेकों दिशाओं में कार्य करने से सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसको समझाया कि भैया 200 फीट अगर नीचे गहराई में खोदते चले जाते तो तुम्हें पानी प्राप्त होता, थोड़ा सा थोड़ा सा 20-20 फुट 10 जगह खोदने से तो तुम्हें पानी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही पांचों इंद्रिय और मन के अनंत विषय हैं, किस किस दिशा में किसको प्राप्त करने के लिए अपन अपने जीवन में भागते फिरेंगे, कम से कम उसकी सीमा तो कर ले, जिससे कि जो अपनी संसार की अंतहीन यात्रा है थोड़ी तो रुके, उसका कोई लिमिट तो हो, उसकी कोई मर्यादा तो हो। इस तरह दसों दिशाओं की सीमा करवा के और अपन को लाभान्वित करने के लिए आचार्य भगवान दिशा दे रहे हैं। अनंतमती की तो घटना सबको मालूम है कि कैसे उन्होंने दसों दिशाओं में सीमा करके और अपने जीवन में व्रतों का पालन किया था। सिकंदर के बारे में घटना अपन ने पढ़ी है कि भैया एक फकीर रास्ते में बैठा हुआ था, सिकंदर को लगा कि उसे तो कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए महलों में बुलवाना चाहिए। सो सैनिक भेज करके, क्यों सिकंदर के बुलाने से तो सब आएंगे, तो सैनिक को भेज करके उस फकीर को महल में बुलवाया। फकीर ने जाने से इनकार कर दिया, काहे को जाऊं, जिसे मिलना हो वो मेरे पास आए, मुझे तो मिलना नहीं है सिकंदर से। ये बात तो सिकंदर के राज्य में कोई कह नहीं सकता था। जाकर के सैनिकों ने कहा कि फकीर बाबा तो ऐसा कह रहे हैं कि जिसको मिलना हो वो मेरे पास आके मिल ले, मुझे तो मिलना नहीं है सिकंदर से। और इतना ही नहीं, बड़ी कड़ी बात कही फकीर ने, बोले सिकंदर तो मेरे दासों का दास है, मैं काहे को उससे मिलूं। अब बताओ, राजा भी राज है और दासों का दास कह रहे। चलो चल करके देखता हूं, आ गया गुस्सा सिकंदर को। और पहुंचे फकीर के पास तो फकीर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराते हुए निगर, होंगे राजा आप? बोले तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारा दासों का दास हूं, मेरी बात समझ में नहीं आई, पहले इस चीज को सिद्ध कर दो अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा वगैरह को तो तैरती थी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं मिलती थी, जब लाइन में लगा तो ये सो कमती में 10 पाव तो ये सुबह में बटी से थोड़ी मिली, खबर था सो उतनी थी। उनको एक तो यह कहा कि या तो हमें संतुष्ट करो नहीं तो फिर तुम्हारा शीश अलग कर देंगे धड़ से। उनको जान तो बड़ी आसान, इंद्रियों के गुलाम होके नहीं, और मेरे पंचेंद्रियों की गुलामी छोड़ दी तो मेरे गुलामों के तुम गुलाम हुए कि नहीं। अब सिकंदर की आंख खुल गई, अपनी खुले चाहे न खुले, वह तो कहानी आए सो मान के सिकंदर की तो खुल गई कि हां बिल्कुल सही बात है, हम तो गुलामों के गुलाम हैं। लेकिन उसके विषयों को जीत ले और कम से कम उनका उपयोग करे, पराधीन ना हो, जो स्वाधीन होकर के अपना जीवन जिए, किसी चीज के अधीन नहीं है कि लाइट चली गई तो पंखा नहीं चल रहा, वह बैठी है चिल्ला रहे सबको पूरे सरकार को कि बताओ बिजली चली गई, बिजली को टोटो है मध्य प्रदेश में, अब ले तो संकलेश ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। अपन इस तरह से छोटी छोटी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होने पर कितना कोई विकल्प हो करके और कर्म बंद कर लेते हैं, इस तरफ अपना ध्यान जाता ही नहीं है। आचार्य भगवंत कह रहे कि भाई पंचेंद्रिय और मन के विषयों की प्राप्ति के लिए कहां कहां तक किस किस दिशा में कितना भटकोगे। अरे कुछ सीमा तो करो कि मैं अपने पंचेंद्रिय और मन के विषयों के लिए जो व्यापार करूंगा, आगमन करूंगा, वो एक निश्चित सीमा के भीतर ही करूंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। और इस तरह मैं अपने जीवन में जो वितरकता और समता भाव है वो निरंतर अधिक मात्रा में बढ़ाता जाऊंगा। कैसे सीमा करें? आचार्य भगवान उसके लिए भी उपदेश देते हैं, दिग्भ्रतियम परिगणतम कृत्वा तो हम वैरायाश्यामी इति संकल्पो दिग्व्रत मां भरणस्थायी निःशेषम। जीवन भर के लिए दसों दिशाओं की सीमा कर लो, जी तो दिग्व्रत है। दिग का मतलब दिशाएं होती हैं, दिशाओं की मर्यादा कर लेना, मर्यादा के बाहर नहीं जाऊंगा ऐसा संकल्प कर लेना, कुछ बिगड़ता नहीं है। विदेश नहीं जा रहे, जा ही नहीं पाऊंगा, तो पैसा नहीं है, है? लेकिन मन में आकांक्षा तो हो सकती है जाने की, सो मैंने मर्यादा कर ली, मैं जाने की सामर्थ्य हो या नहीं हो, अब तो मैं अपने भारत से चारों दिशाओं में या कि दसों दिशाओं में बाहर नहीं जाऊंगा ऐसा संकल्प कर लिया। उसके बाहर वैसे भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन मन में आकांक्षा के माध्यम से कितना कर्म का बंध हो रहा था, विकल्प ही मिट गया, जाने नहीं है, अच्छो हुए चाहे बुरा हुए। इस तरह अपन व्यर्थ के पाप से बच जाते हैं, मर्यादा कर देते हैं। कैसे मर्यादा करें? तो मकरा कर सरी दटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा दिशां दशानां प्रति संहारे विशालस्य, या प्रति संहारे प्रसिद्धानि विशालस्य, तो उसमें आएगा देशावकाशिक। जो प्रसिद्ध है क्षेत्र उनके माध्यम से अपनी सीमा बना लो, इस समुद्र के पार नहीं जाऊंगा, इस नदी के उस पार नहीं जाऊंगा, इस घने जंगल के उस पार नहीं जाऊंगा। इस तरह सीमा बनाई जा सकती है नदी के द्वारा, समुद्र के द्वारा, जंगल के द्वारा, पर्वत के द्वारा, या कि चार कोश का की सीमा जो अंतहीन है, अमर्यादित है, उसकी मर्यादा तो करनी ही चाहिए। ऐसा थोड़ा सा अपन अपने मन में विचार करें और संकल्प लें कि हां ठीक बात है, मैं एक निश्चित सीमा के बाहर आवागमन नहीं करूंगा, आवागमन से होने वाली हिंसा से बचूंगा, वहां किस तरह से मेरे मन में और पाप करने के विचार आते हैं उन सब से मैं बच जाऊंगा सीमा करके। धन पैसा और पांच इंद्रिय और मन के विषय तो ऐसे हैं कि जितने मिल जावे उतना ही कमती है, असंतोष बना ही रहता है। चार चीजें हैं तो उसमें संतोष नहीं है, 40 चाहिए, और 40 हो जावे तो संतोष हो जाए तो ही ठीक है, 40 हो जाए तो 400 चाहिए, सीधो 190 है। हाँ, ऐसा नहीं दुगनी उगनी नहीं, सीधा 10 गुना हिसाब है, मोर एंड मोर। आचार्य भगवंत कह रहे कि कुछ तो सीमा करो, कुछ तो मर्यादा करो, लेकिन अपन उन्हीं की गुलामी करते हुए रहते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि सबके लिए मैं कितनी अपने जीवन की सांसें गवा रहा हूं, और अंत में ये सब छोड़ करके मुझे जब सांसें ही समाप्त हो जाएंगी तो यहां से विदा लेना पड़ेगा। सिकंदर की बोध को प्राप्त होकर के आखिरी समय में दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकलवा करके मरने के लिए, जब मरने के उपरांत ये घोषणा करके गया था तो लोगों ने सहज रूप से पूछा कि ऐसा क्यों करवा रहे हो, तो स्पष्ट उन्होंने कहा था कि लोग देख लें कि सिकंदर पूरे जीवन भर लड़ाई लड़ लड़की और धन संपत्ति इकट्ठी करता रहा, लेकिन साथ में कछु नहीं ले गया, दो ही हाथ खाली है। इतना बड़ा संदेश स्वयं के लिए भी और लोगों के लिए भी। एक बार घटना आती है उन्हीं के जीवन की कि कहीं जंगल में प्यास से बेहाल हो गए, सैनिकों ने सब ओर पानी की गवेषणा की कि कहीं एक गिलास पानी मिल जाए, सो मिलना मुश्किल हो गया। बहुत दूर जाकर के एक सैनिक को एक व्यक्ति मिला, उसके पास में पानी था, कहा कि भाई पानी दे दो, मेरे राजा को बहुत प्यास लगी है, प्राण तो बिल्कुल कंठगत हो रहे हैं, तुम्हारा पानी बहुत कीमती है इस समय तो। तो उसने कहा कि दे तो दूंगा, लेकिन पूछ करके आओ कि कितना उस पानी की एवज में अपना राज मुझे देंगे। सो सिकंदर को तो पानी चाहिए था, उन्होंने कहा कि एक गिलास पानी अगर देता है तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। व्यक्ति जोर से हंसा, आधे से काम नहीं चलेगा, फिर से पूछ के आओ कि ठीक ठीक बताओ, हम तुम्हें एक गिलास पानी देंगे, इतने में तो हम सौदा नहीं करेंगे, कुछ और बढ़ाओ। तो सिकंदर को तो एक एक क्षण निकलना मुश्किल हो रहे थे, सो मुंह से निकला कि एक गिलास पानी मुझे दे दो, चाहे मेरा पूरा साम्राज्य ले लो। अब तो उस व्यक्ति ने ठहाका लगा करके और एक गिलास पानी ला करके सिकंदर के सम्मुख रखा कि राजन, तुम्हारे पूरे साम्राज्य की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है, के लिए तुम पूरे जिंदगी भर अपनी सांसें गंवाते रहे, एक गिलास पानी में पूरा साम्राज्य चला गया, मेरे से तुम कह रहे कि एक गिलास पानी दे दो, मेरा पूरा साम्राज्य दे लो, जिसके लिए कि औरों से तुमने साम्राज्य छीन करके और पाप कमाया, जीवन को अच्छा बनाना है तो अपने जीवन में जो आजीविका के साधन अपन जुटाते हैं और उनके लिए सारे संसार में जहां मिलते हैं वहां से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। नहीं भाई, मेरे आजीविका के साधन मेरी सीमा के अंदर जितने होंगे उतने में ही अपनी आजीविका करूंगा, सीमा से बाहर अपने आजीविका के लिए मैं प्रयत्न ही नहीं करूंगा। अगर ऐसा अपन विचार कर ले तो लगता जरूर क्षण भर के लिए करेंगे तो बड़ा घाटा है, तो मौका आना तो लाख रुपया छूट जाए अपने। ये भैया प्राण ही छूट जाए फिर काका रहे लाख रुपया जा बताओ। ऐसा विचार करके अपन को जीवन को मर्यादित कर लेना बहुत जरूरी है। पांचवेंद्री और मन, इनकी यदि हम पूर्ति करते रहते हैं और इनकी पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो यात्रा अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है। हमें कोई ना कोई सीमा निर्धारित करनी होगी अपनी आजीविका चलाने के लिए। हमें संसार के कार्य करना पड़ते हैं, लेकिन हम ध्यान रखें कि अपने जीवन में हम एक निश्चित सीमा के बाहर किसी तरह के सांसारिक कार्य के लिए उत्सुक नहीं होंगे, रुचि नहीं लेंगे। लगता तो ये है कि जब हम दिशाओं की सीमा बना लेंगे तो दिशाओं की सीमा के बाहर जब हम कोई व्यापार व्यवसाय नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। यदि हम विदेश नहीं रहेंगे तो हम कैसे प्रगति कर पाएंगे? ऐसा अपने भीतर सहज रूप से भाव उत्पन्न हो जाता है कि दिवंगत लेने से तो हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो प्रगति हम मानते हैं जिसे, वह रुक जाएगी। भैया पहले सोच ले कि मैं भोगवादी दृष्टिकोण से जीवन जीना चाहता हूं या कि अध्यात्मवादी जीवन से। मैं प्रगति किसे मानता हूं? पहले मैं बैलगाड़ी में चलता था, यात्रा करता था, अब मैं जेट विमान में यात्रा करता हूं, मैं इसे प्रगति मानूं? मैं पहले थोड़े से ही संसार के प्रपंच में पड़ता था, अब तो 24 घंटे संसार के ही प्रपंच में पड़े रहता हूं, कषायन करता हूं, अज्ञानता से अपने जीवन को घेरता जाता हूं, क्या यह मेरी प्रगति है? मुझे तो कषायन को जीतना, अज्ञान से बचना और समता भाव रखना, यह और इसमें ही अपनी प्रगति माननी चाहिए थी। जो भौतिक उपलब्धियां हैं यदि हम उनको ही प्रगति माने तो भैया धर्म करने से, जीवन को अनुशासित करने से उनमें भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं सुनने में आती हैं। बच्चे आकर के बता देते हैं कि महाराज हमने खूब पढ़ाई करी, अपना करियर बनाने के लिए जितना अध्ययन हो सकता था उतना किया, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच करके